SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाओं सहित नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीते कल 76वां गणतंत्र दिवस खूब जोशोखरोश से मनाया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान पर विस्तार से चर्चा की और इसे भारत को एकता में पिरोने वाला एक विलक्षण ग्रंथ बताया।
हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज इसीलिए बन पाया है क्योंकि नागरिकों की निष्ठा सदियों से हमारी नैतिकता पर जीवन दृष्टि का प्रमुख तत्व रही है। हमारा संविधान भारतवासियों के रूप में हमारी सामूहिक अस्मिता का मूल आधार है जो हमें एक परिवार की तरह एकता के सूत्र में पिरोता है। पिछले 75 वर्षों से संविधान ने हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। आज के दिन हम संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभा के अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों, संविधान के निर्माण से जुड़े विभिन्न अधिकारियों और ऐसे अन्य लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिनके कठिन परिश्रमों के फल स्वरूप हमें ये विलक्षण ग्रंथ प्राप्त हुआ।
उन्होंने संसद में प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक एक राष्ट्र एक चुनाव योजना को सुशासन की शर्तों को फिर से परिभाषित करने वाली दूरदर्शी सुधार बताते हुए कहा कि प्रस्तावित योजना नीतिगत पक्षाघात को रोक सकती है और कई अन्य लाभों के अलावा वित्तीय बोझ को कम कर सकती है।
इतने बड़े पैमाने पर सुधार के लिए साहसपूर्ण दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। देश में चुनाव को एक साथ संपन्न कराने के लिए संसद में पेश किया गया विधेयक एक और ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा सुशासन को नई आयाम दिया जा सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था से शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है। नीति निर्धारण से जुड़े निष्क्रियता समाप्त की जा सकती है। संसाधनों की अन्यत्र खर्च हो जाने की संभावना कम हो सकती है तथा वित्तीय बोझ को कम किया जा सकता है। इनके अलावा जनहित में अनेक अन्य लाभ भी हो सकते हैं।
इस संबंध में आपको बता दें कि विपक्षी दल सत्तारूढ़ भारतीय जनता दल पर पिछले कुछ वर्षों से लगातार संविधान को कमजोर करने और बदलने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का विरोध विपक्षी दलों के अलावा कई सत्तारूढ़ दलों के सदस्य भी कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराकर परेड की शुरुआत की। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बतौर मुख्य अतिथि इस मौके पर शामिल हुए। इस बार गणतंत्र दिवस परेड का विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास था। परेड की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम के साथ हुई जिसमें 300 कलाकारों ने वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड निकाली। फिर इंडोनेशिया के सैन्य जवानों का दस्ता परेड करते हुए कर्तव्य पथ से गुजरा। भारतीय सेना ने भीष्म टैंक पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के साथ मार्च किया। सतह से सतह पर 400 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली प्रलय मिसाइल भी परेड में दिखी। भारतीय वायुसेना के फ्लाईपास्ट में 40 विमानों ने हिस्सा लिया जिसमें 22 लड़ाकू जेट, 11 मालवाहक हवाई जहाज और 7 हेलीकॉप्टर शामिल हुए। किसानों ने भी अनूठे ढंग से केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए गणतंत्र दिवस मनाया। उन्होंने फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP समेत 13 मांगों को लेकर हरियाणा पंजाब समेत 13 राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। हरियाणा के अंबाला, करनाल और जींद के अलावा पंजाब के अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में इसका काफी असर देखने को मिला। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने ट्रैक्टर मार्च निकालने की वजह बताई।
जितने भी राज्य हैं उनके संगठनों का अपने ढंग से कार्यक्रम होगा। 12 से लेकर 1:30 बजे तक चाहे सैलोज हो, चाहे शॉपिंग मॉल हो, चाहे भाजपा के कार्यालय अथवा घर हो, वहां पर ट्रैक्टर हम लोग खड़े रखेंगे और जो अपनी 12 मांगे हैं उनको मनवाने के लिए जो खेती का खलड़ा आया, उनको वापस करवाने के लिए मांग करेंगे सरकार से भी हमारी मांगे मानी जाए और खेती मंडी को निजी हाथ में ना दिया जाए।
देश बेशक गणतंत्र के उल्लास में डूबा हो, मगर चुनावी राजनीति की अपनी ही चाल होती है। 5 फरवरी को होने वाला दिल्ली विधानसभा चुनाव भी इससे अछूता नहीं है। तीनों दल आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में व्यस्त हैं। खासकर आम आदमी पार्टी और भाजपा पोस्टरों के जरिए हमला कर एक दूसरे को बेईमान और स्वयं को मसीहा साबित करने में लगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी सभा में आम आदमी पार्टी पर घोटालों में लिप्त होने का आरोप लगाया।
28,400 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, 5,400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला, 4,500 करोड़ का डीटीसी बसों का घोटाला, 1,300 करोड़ का बच्चों के क्लासरूम का घोटाला, 500 करोड़ रुपए का बस में पैनिक बटन का घोटाला, 52 करोड़ का शीश महल, 100 करोड़ रुपया वकफ की संपत्ति बेचने में खाए, 65,000 मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट किए और विज्ञापन इतने किए कि पूरे देश भर में एक ही मुख्यमंत्री के पास से सुप्रीम कोर्ट ने 96 करोड़ रुपया वसूलने का काम किया, 96 करोड़ रुपया।
उधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों को चेता रहे हैं कि यदि भाजपा दिल्ली में सरकार बनाती है तो वह आम आदमी पार्टी द्वारा चलाई गई सभी मुफ्त योजनाएं बंद कर देगी।
भाई साहब, बहुत मुश्किल था इनकी बात। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कहीं जाके देख लो, खटारा है इनके सरकारी स्कूल, खटारा है। आसान नहीं है सरकारी स्कूल ठीक करना, आसान नहीं था हमारे लिए, बहुत मेहनत करी हमने सरकारी स्कूल ठीक करके। बीजेपी ने अभी ऐलान करा है अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी, वो कह रहे हैं दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल बंद कर देंगे। सरकारी स्कूल बंद होने चाहिए क्या? अभी राजस्थान में इनकी सरकार बनी है थोड़े दिन पहले, 1 हफ्ते में 850 स्कूल बंद कर दिए राजस्थान में। दिल्ली में अगर सरकार बन गई, सारे सरकारी स्कूल बंद कर देंगे और सरकारी स्कूलों की जमीन किसको देंगे? अडानी को उठा के दे देंगे।
कांग्रेस भी दिल्ली चुनाव में अपना दमखम दिखा रही है और भाजपा तथा आम आदमी पार्टी दोनों पर ही सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग से भाजपा द्वारा प्रचारित की जा रही दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म दिल्ली 2020 को सांप्रदायिक जहर बता रोकने की मांग की है।
इफ फिल्म्स लाइक दिल्ली 2020 आर अलाउड टू बी रिलीज्ड डेज प्रायर टू द इलेक्शन, यू आर थ्रोइंग इलेक्टोरल फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी into the dustbin. This is a direct attempt to influence voters, a directly focused, distorted, debased narrative quay a particular religious community, and a brazen attempt to disturb public tranquility. We strongly condemn this initiative, if it can be called that, and we strongly and strongly hope that the ECI will put an immediate stop to it forthwith.
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमले की कहानी भी किसी मसाला फिल्म की तरह नाटकीय मोड़ ले रही है। एक नए खुलासे के अनुसार हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट श्री खान के घर से लिए गए सैंपल से मैच नहीं हुए हैं। इस सिलसिले में मुंबई पुलिस अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार करके 2 को छोड़ चुकी है। अब पुलिस का कहना है कि श्री खान पर हुए हमले के मामले में 1 से ज्यादा आरोपी शामिल हो सकते हैं। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।